जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन सारे यमुना तेरा वन सारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन सारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई जय जय प्रभुपाद 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 নিতাই গর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল হরিনাম সংকীর্তন গীত শ্রীল প্রভুপাদ মহারাজ গীত গ্রন্থরা শ্রীমদ ভাগবতম গীত গীতাই গৌর প্রেমানন্দে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায নারায়ণম নমস্কৃত্যম নরম চৈব নরোত্তমম দেবীম সরস্বতীম ব্যাসম ততো জয়মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যম ভাগবত সেবয়া ভগবতে উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নেষ্ঠকিম শ্রীমদ ভাগবতম স্কন্ধ অধ্যায় দশ শ্লোক চৌদ শব্দ ইস প্রকার হ্যাঁ না ত্বাম বয়ম জড ধিয়া তু বিদাম উমান কুটস্থানম আদিপুরুষম জগতাম অধীশম অত সত্ত্বত সুরগণা রজস প্রজায়িষ মন্যো চ ভূতপতয় চ ভবান গুণৈষ ন ত্বাম বয জড ধিয়ো তু বিদাম ভূমান ন ত্বাম বয়ম জড ধিয়ো তু বিদাম ভূমান কূটস্থমাদি পুরুষম জগতাম দেশম কূটস্থমাদিপুরুষম জগতাম দেশম যত সত্ত্বতঃ সুরগণা রজস প্রজেশা যত সত্ত্বতঃ সুরগণা রজস প্রজেশা মন্যো স ভূতপতয় স ভবান গুণেশ ন ত্বাম বয় জড ধিয়ো নু তু বিদাম ভূমান কূটস্থমাদিপুরুষম জগতাম দেশম যত সত্ত্বতঃ সুরগণা রজ রজস প্রজেশা মন্যো স ভূতপতয় স ভবান গুণেশ ন ত্বাম বয় জড ধিয়ো নু বিদাম ভূমান কূটস্থমাদিপুরুষম জগতাম দেশম यत्सत्वत सुरगणारजसः प्रजेश्या मन्यो स भूतपतय स भवान् गुणेश वाम वयम जाड़धियो दुविदां भूमान माता जी जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। धन्यवाद। इस श्लोक में आए हुए शब्द अर्थ इस प्रकार है, न नहीं, त्वाम तुमको भगवान को, वयम हम, जड़ धिया मंद बुद्धि वाले, तो निसंदेह विदाम जानते हैं, उमन हे श्रेष्ठ, कुटस्थनम हृदय के भीतर, आदि पुरुषम आदि भगवान को, जगताम जगत का, अधिशम सर्वस्व स्वामी को, यता आपके निर्देश अनुसार, सत्वता सत गुणों से, सूरगणा ऐसे देवता, रजस रजोगुण से, प्रजा ईशा प्रजापति, मन्यो तमोगुण से प्रभावित प्रभावित, च तथा भूतपतय भूतों के शासक, स ऐसा पुरुष, भवान आप, गुणीश तीनों गुणों के स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिविदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है, ये सर्वव्यापी परम पुरुष, हम लोग मंद बुद्धि होने के कारण यह नहीं जान पाए कि आप कौन है, किंतु अब हम जान पाए हैं कि आप सारे ब्रह्मांड के स्वामी, अक्षर तथा आदि पुरुष, आदि परम पुरुष है। देवता लोग सतोगुण से, प्रजापति रजोगुण से तथा भूतों के ईश तमोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु आप इन समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य, जड़ धेय शब्द बुद्धि पशु बुद्धि का सूचक है। ऐसा बुद्धि वाला व्यक्ति भगवान को नहीं समझ सकता। पशु बिना मार खाए मनुष्य के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। उसी प्रकार जो जड़ बुद्धि है वे भगवान को नहीं समझ पाते, किंतु तीनों गुणों के द्वारा बुरी तरह प्रताप्रीत होकर भगवान को समझने लगते हैं। किसी हिंदी कवि का कथन है, दुख में सब हरि भजे, सुख में भजे न कोई, सुख में जो हरि भजे दुख काहे को होए। दुखी होने पर वह मंदिर या गिरजाघर में भगवान को पूजने जाता है, किंतु ऐश्वर्यवान होने पर भगवान को भूल जाता है। अतएव प्रकृति द्वारा मानव समाज को दंडित करना भगवान के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपनी मंद बुद्धि के कारण भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम्, श्रीगुरुनवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं, सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं, परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं, श्रीराधाकृष्णपादान्, सहगण ललिता श्रीविशाखानितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव स, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो इस 14 नंबर श्लोक का हमने आवृत्ति किया, उससे आगे 13 नंबर श्लोक में प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया, इसके लिए श्लोक को उच्चारण करते हैं। खाली यत्रोष विभन्न विप्रवृत्ति कटाक्ष पात संभ्राप्त नक्रम करम सुगीण घोष सिंधु शिरसि अरहं परगृह रूपी पाद अरविंदम सुपाश उपासयेत। अनुवाद इस प्रकार है, समुद्र तट पर पहुंचकर भगवान रामचंद्र 3 दिन तक भूखे रहे और साक्षात समुद्र के आने की प्रतीक्षा करते रहे। जब समुद्र नहीं आया तो भगवान ने अपने क्रोध लीला प्रकट की और समुद्र पर दृष्टिपात करते ही समुद्र के सारे प्राणी जिनमें घड़ियाल तथा मगर सम्मिलित थे भय के मारे उद्विग्न हो उठे। तब शरीर धारण करके डरता हुआ समुद्र ऊंजा और सारी सामग्री लेकर भगवान के पास पहुंचा और उसने भगवान के शरणों कमल पर गिरते हुए इस प्रकार कहा, जो हमने इस श्लोक का उच्चारण किया वो श्री समुद्र देव के द्वारा स्तुति है, एक ही श्लोक में स्तुति है समुद्र देव के द्वारा। तो क्रम के अनुसार श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद और 10वें अध्याय में जो श्री रामचंद्र की लीला का वर्णन हुआ है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं वो संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि आगे प्रचलित है श्री रामचरित्र, क्योंकि वाल्मीकि जी ने पूरा ग्रंथ रचा है श्री रामचरित्र ऊपर, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी संक्षेप में 2 अध्याय में श्री रामचरित्र का वर्णन करते हैं 10 और 11। तो इसलिए बहुत संक्षेप में वर्णन करते हुए जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो पिछले श्लोक में 12 नंबर श्लोक में हमने सुना कि जटायु के साथ रावण का युद्ध हुआ और युद्ध करके जटायु परास्त होकर अपना पंख कट गया, फिर बाद में रावण सीता जी को हरण करके ले गया और हरण ले करके ले गया, फिर बाद में भगवान रामचंद्र उधर आते हैं, फिर उनका अग्निदाह करते हैं, फिर बाद में हनुमान जी से भेंट होती है और बालिका वध करते हैं। उन तरह फास्ट चलते हैं सुखदेव गोस्वामी एकदम स्पीड से, और इसी तरह चलते चलते फिर बाद में समुद्र के सब वानरों को लेकर समुद्र के तट पर आते हैं भगवान रामचंद्र। समुद्र के तट पर आने पर 3 दिन तक भगवान राम उपास करते हैं ताकि समुद्र की सहायता से वो समुद्र ऊपर लांग कर उनको लंका में जाना था, हिंद महासागर जो समुद्र है वो। तो समुद्र को एक दिन उपास किया भगवान राम ने ताकि समुद्र प्रकट हो, दूसरा दिन उपास किया फिर प्रकट नहीं हुए, फिर तीसरा दिन भी उपास किया, 3 दिन तक रामचंद्र भगवान ने उपास किया लेकिन समुद्र प्रकट नहीं हुए। फिर भगवान ने क्रोध लीला प्रकट की, प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में, फिर भगवान ने क्रोध लीला प्रकट की। क्रोध में आकर भगवान ने अपनी दृष्टि को क्रोध से समुद्र को देखा, मया दक्षिण प्रकृति, भगवान के इशारे से सब प्रकृति चलता है। तो समुद्र जान गए कि भगवान की क्या इच्छा है, फिर क्रोध के कारण देखने के कारण पानी में जो मगरमच्छ बड़े बड़े घड़ियाल और मगरमच्छ से वो उद्विग्न होने लगे, जलने लगे, वैसे जलते हुए प्राणियों को देखकर समुद्र फिर प्रकट हुए। और सारी पूजा की सामग्री लेकर भगवान के सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के कारण, प्रकट होने के बाद स्तुति करने, एक ही श्लोक में यह स्तुति है समुद्र देव की। तो प्रभुपाद तात्पर्य में स्तुति से ज्यादा तात्पर्य दिया है अगले वाला 13 नंबर श्लोक में। प्रभुपाद कहते हैं जो जड़ बुद्धि वाले हैं वो भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं। ऐसे भी समुद्र देव ने वो अपने आप को अप्लाई किया है कि मैं जड़ बुद्धि वाला था इसलिए आपकी नहीं समझ पाए आपकी लीला को। तो फिर जो जड़ बुद्धि वाले हैं भगवान की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं। और इसी तरह इस भौतिक जगत में जो ऐश्वर्यवान है, इस कवि का एक सुंदर पद दिया है प्रभुपाद ने, जो सुख में कोई नहीं बचता है और दुख में सब कोई मंदिर में जाते हैं, उसका भाव यह है प्रभुपाद का कि सुखी जो ऐश्वर्यवान है वो मंदिर में के भगवान को नहीं बचते। ज्यादा करके हम देखते हैं जो मंदिर में आते हैं मध्यम वर्ग के लोग या जो कम पैसे वाले हैं वो आते हैं ज्यादा करके मंदिर में। जो धनवान होते हैं वो मंदिर में प्राय नहीं आते, प्राय कोई कोई शुक्रवार जीव रहता है वही आता है, बाकी नहीं आता है। तो इसी तरह जो दुख में कोई भगवान को भजे, सुख में कोई भगवान को भजे ले तो इसमें फिर दुखी होने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि जिनका मन भगवान में लग गया तो फिर उनको दुख का एहसास नहीं होता है। तो इसी तरह समुद्र देव प्रार्थना करते हुए भगवान की सत्ता को फिर समझ गए और स्तुति में बताया था कि आप ही ईश्वर हो, आदि पुराण पुरुषम हो और सभी जीवों के ईश्वर और सभी के नियंता हो। इस भगवान से इस तरह स्तुति करते हुए भगवान के शरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। इसी तरह श्री रामचंद्र का चरित्र अद्भुत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने आचरण से इस भौतिक जगत को दिखाया है कि किस तरह एक पुत्र का कर्तव्य है, किस तरह एक शिष्य का कर्तव्य है, किस तरह एक पति का कर्तव्य है और किस तरह एक राजा का कर्तव्य होता है। इसी तरह अपने आप को आचरण करके सभी मनुष्य जाति को वो मर्यादा में रहकर किस तरह अपने जीवन व्यतीत करे वो बताया है। और सुखदेव गोस्वामी वहां से शुरू लीला करते हैं जहां विश्वामित्र उनको लेने के लिए आते हैं अयोध्या में, और अयोध्या में लेकर आते हैं और विश्वामित्र के साथ जाते हैं और युद्ध करते हैं खरदूषण और मारिस से, उनको पराजय करके फिर उनका यज्ञ में जो बाधा डाल रहे थे वो बाधा को से मुक्त करके विश्वामित्र फिर बाद में जनकपुरी जाते हैं और वहां किस तरह एक शिष्य अपने गुरु की सेवा करता है वो आदर्श भगवान श्री राम ने उधर स्थापित किया है। जब विश्वामित्र शाम के समय शयन कर रहे थे तब राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के शरण दबा रहे हैं, शरण दबाते हुए बहुत समय तक शरण सेवा करते हैं, शरण की सेवा। फिर बहुत रात हो जाती है, फिर राम लक्ष्मण को कहते हैं कि आप अभी आराम करो, मैं गुरु जी की सेवा विश्वामित्र की सेवा करता हूँ। फिर लखन को सुला देते हैं, फिर बाद में राम सेवा करके अंत में विश्वामित्र जब कहते हैं आज्ञा देते तब वो आराम करने के लिए जाते हैं। तो ये गुरु के प्रति शिष्य का कर्तव्य रहता है, जब तक गुरु की आज्ञा न हो तब तक अपने जीवन में आराम नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह श्री रामचंद्र ने दिखाया है कि किस तरह गुरु की सेवा करना चाहिए। फिर सुबह में भी सबसे पहले उठकर अपने नित्यक्रम करते हैं, फिर बाद में लखन को उठाते हैं, फिर बाद में फिर से गुरु की सेवा में लग जाते हैं। इसी तरह अपने जीवन में आचरण करके भगवान श्री रामचंद्र ने सिखाया कि शिष्य का क्या कर्तव्य होता है। फिर बाद में सीता स्वयंवर होता है, फिर अयोध्या में आते हैं, फिर अपना पुत्र का क्या कर्तव्य होता है अपने पिता और के प्रति वो दिखाया। पिता ने उसको आज्ञा दी कि आपको 12 साल तक वनवास जाना है, तो तुरंत एक अपने पिता का कर्तव्य समझकर भगवान श्री रामचंद्र तुरंत ही वन जाने के लिए रवाना हो गए पिता की आज्ञा के अनुसार। इसी तरह पुत्र को चाहिए कि अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, उसमें वो उसको इस मनुष्य जीवन में सुख प्राप्त हो सकता है। वो भी अपने जीवन से आचरण करके दिखाए, फिर बाद में सीता जी का हरण हो गया, पति का क्या कर्तव्य होता है वो भी दिखाए कि पत्नी का कैसे रक्षण किया जाए, फिर बाद में रावण के साथ युद्ध करके पूरा जीवन मनुष्य को दिखाया है कि किस तरह मर्यादा में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो इसी तरह रावण के साथ युद्ध करके फिर श्री राम राज्य स्थापित करते हैं, और इसी तरह दो अध्याय में भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और इसी तरह ये अपने आचार्य में परंपरा रही है कि जो पूर्ववत पूर्व वर्णन हुआ है उनका संक्षेप में वर्णन करते हैं। इसे चैतन्य चरितामृत में भी हम देखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी जब ऐसा कोई प्रसंग आता है उसमें भी कहते हैं कि वृंदावन ठाकुर ने इस लीला का विस्तृत रूप से वर्णन किया, इसलिए मैं उसमें ज्यादा वर्णन नहीं करता हूँ, वो संक्षेप में ही वो स्मरण कराते हैं खाली। उसी प्रकार इस भागवतम में भी दो अध्याय में खाली स्मरण कराया है श्री रामचंद्र जी चरित्र का। पूरा ग्रंथ है अगर कहा जाए तो वाल्मीकि रामायण, लेकिन सब जानते थे क्योंकि त्रेता युग में पूरा रामचरित्र और पूरा सब जानते थे, इसलिए परीक्षित महाराज भी जानते थे, इसलिए संक्षेप में इस तरह वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी इस कथा ईशानुकथन है जो वंश परंपरा चल रही है उसके आगे चलते हैं। तो इसी तरह श्री रामचंद्र का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी आगे फिर से जो सूर्य वंश में राजा हो गए उनका वर्णन करते हैं। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य श्रीतामृत में भी वर्णन आया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में यात्रा कर रहे थे तब उस स्थान पर पहुंचे श्रीरंगम क्षेत्र के आगे चैतन्य श्रीतामृत नवमे अध्याय में 11 नंबर में श्लोक में कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वैष्णव मध्य राम उपासक सब कह तत्ववादी कह हय श्री वैष्णव। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं इस दक्षिण भारत में कोई कोई राम उपासक होते हैं और कोई कोई तत्ववादी भी है। तत्ववादी का इस प्यार में के भावार्थ में प्रभुपाद बताते हैं, तत्ववादी का तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि तत्ववादी से तात्पर्य है मध्वाचार्य का, क्योंकि मध्वाचार्य भी श्री सीताराम की उपासना किए हैं। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद पूरा भावार्थ और लंबा तात्पर्य दिए हैं। जब भगवान रामचंद्र अयोध्या में राज कर रहे थे तब एक ब्राह्मण था, वो भगवान का दर्शन करने के बाद ही वो कुछ अन्न या जल ग्रहण करते थे। तो कुछ राज्य के कार्य में भगवान रामचंद्र कुछ दिन के लिए बाहर गए, तो बाहर जाने के कारण उस ब्राह्मण ने उपवास किया, 7 दिन तक उपवास किया, जल भी ग्रहण नहीं किया और भगवान का दर्शन किए बिना वो अन्न भी नहीं ग्रहण करते थे और जल भी नहीं। तो 7 दिन तक रामचंद्र वहां वापस नहीं आए अयोध्या में, तब तक उस ब्राह्मण ने उपवास किया। तो उपवास करने के कारण जब भगवान रामचंद्र आए तो उनको पता चला कि ब्राह्मण ने 7 दिन तक उपवास किया है। तो फिर लखनलाल को कहते हैं लक्ष्मण जी को कि आप जो विग्रह की सेवा करते हैं सीताराम की, वो विग्रह उनको दे दो उस ब्राह्मण को। तब वो लखन उस विग्रह ब्राह्मण को दे देते हैं, फिर वो ब्राह्मण उस विग्रह का सेवा करते हैं, अर्चन करते हैं पूर्ण रूप से। उस विग्रह ईश्वर को क्या राजा के समय से उस सूर्य वंश में पूंजित हो रहा था, वही विग्रह रामचंद्र होने के बाद भी अयोध्या में सीताराम की पूजा हो रही थी, वही विग्रह उस ब्राह्मण को दिया लक्ष्मण जी ने। तो उस ब्राह्मण ने पूरा जीवन उस विग्रह की सेवा की, फिर बाद में उनका मृत्यु का समय आया तब वो विग्रह उसने हनुमान जी को दिया कि अब मेरे जाने का समय आ गया, अब इस विग्रह की सेवा आप कीजिए। तब हनुमान जी ने उस विग्रह की सेवा प्रारंभ की और अपने गले में रखकर वो वृक्षस्थल तक आए, तब तक इतना वो लगाकर रखते थे हनुमान जी उस सीताराम का विग्रह, और बहुत साल तक हनुमान जी ने भी सेवा किया। फिर हनुमान जी गंधमादक पर्वत पर गए, वहां पांडव में जो भीमसेन थे उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। फिर वो विग्रह हनुमान जी ने भीमसेन को दिया पूजा करने के लिए। फिर भीम ने वो विग्रह की सेवा की बहुत साल तक इस विग्रह की सेवा करके फिर बाद में वंश परंपरा उस पांडु वंश में उस विग्रह की सेवा चलती रही। फिर अंत में एक राजा हुआ पांडु वंश के अंतिम राजा, उसने सेवा करके फिर बाद में उस विग्रह को उड़ीसा के राजा गजपति को दे दिया, सीताराम का विग्रह जो अयोध्या में पूजा हो रही थी, वो उस विग्रह को उड़ीसा का राजा गजपति को दे दिया। और उस गजपति ने उस बहुत साल तक उस विग्रह की सेवा की। और इस विग्रह की सेवा करते करते समय बीतते बीतते फिर उसी मध्वाचार्य संप्रदाय में एक नरहरि तीर्थ करके आचार्य हुए। नरहरि तीर्थ आचार्य को उस गजपति ने उस विग्रह को दिया, नरहरि आचार्य को। फिर उसी नरहरि ने सेवा की, नरहरि तीर्थ ने सेवा की बहुत। फिर बाद में जब मध्वाचार्य के इस भौतिक जगत में से जाने का समय हुआ तो उससे पहले 3 मास पहले उस विग्रह उस मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ सीताराम का। तो इस प्राप्त करके उस विग्रह को उड़ीपी में स्थापित किया सीताराम का विग्रह। उस स्थापित करके फिर बाद में मध्वाचार्य ने 3 मास तक पूजा सेवा अर्चना की। फिर इस भौतिक जगत से भगवान को धाम को प्राप्त करके फिर बाद में उसी वंश परंपरा अनुसार आज भी उड़ीपी में उस सीताराम की सेवा पूजा अर्चन हो रहा है। ऐसा पूरा तात्पर्य प्रभुपाद ने इस 9वें प्रकरण में 11 नंबर श्लोक के भावार्थ में दिया है पूरा ये। लेकिन हम उड़ीपी गए थे अभी भी, लेकिन सीताराम जी का विग्रह हमने दर्शन नहीं कर पाए। कहाँ शायद कमलेश्वर प्रभु को मालूम होगा कि सीताराम का विग्रह कहाँ है, लेकिन हमें खास करके वहाँ तो कृष्ण है, उड़ीपी कृष्ण उसी का ही दर्शन किए, लेकिन सीताराम का विग्रह का दर्शन हम नहीं जान पाए और नहीं कर पाए। तो इसी तरह सीताराम की लीला आज भी इस युग में भी अपने विग्रह के रूप में सभी लोग में प्रचलित है और सभी उनकी सेवा करते हैं। और देखा जाए तो रामचंद्र मर्यादा के होने के कारण आप गांव में कहीं भी जाइए तो श्री राम मंदिर सभी गांव में होता है। कोई भी गांव में छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, सभी में राम जी मंदिर तो अवश्य होगा, क्योंकि सभी के हृदय में मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण सभी के मनुष्य के हृदय में श्री रामचंद्र निवास करते हैं। क्योंकि मंदिर होने के कारण सभी लोग उत्सव के समय या नित्य कर्म के अनुसार नित्य जिनका दर्शन करने की लालसा होती है वो मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो इसी तरह मध्वाचार्य में भी श्री सीताराम की पूजा होती है। फिर बाद में श्री संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, प्रभुपाद दूसरा भी कहते हैं श्री वैष्णव संप्रदाय, उसमें भी सीताराम लक्ष्मण की सेवा पूजा होती है। उसमें भी मूल एक प्रमुख आचार्य हो गए फूलशेखर अडवाल, वो नित्य रूप से सीताराम की ज्यादा करके कथा सुनते थे, उनका मन ही आवेश उसमें रहता था फूलशेखर अडवाल। तो इस फूलशेखर अडवाल भी नित्य रूप से भगवान राम की कथा सुनते हैं और सुनते रहते हैं। तो एक समय उनके पास रोज एक ब्राह्मण आकर भगवान की राम कथा सुनाते हैं। तो सुनाते सुनाते एक बार उस प्रसंग में आए जहाँ भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ यज्ञशाला में जो उनकी बाधा डाल रहे थे असुर राक्षस, उनको वध करने के लिए आ रहे थे। तब राम और लक्ष्मण दोनों अकेले थे और विश्वामित्र थे, तो उस समय वो असुर आते राक्षस खरदूषण और मारिस वो सब तब युद्ध करते हैं। तब उस प्रसंग को सुनकर राजा फूलशेखर भी उसमें निवेश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण अकेले हैं तो उनको पराजित कर देंगे ये राक्षस लोग, तो मुझे भी उनकी सहाय के लिए जाना होगा। तो तुरंत वो आसन से खड़ा हो जाता है और उनके सैनिक को और सेनापति को आदेश देते हैं सलोम में जाना युद्ध के लिए। किसके लिए युद्ध के लिए जाना है वो नहीं बताते, सलोम को सेनापति को कहते हैं हमें युद्ध के लिए जाना है। तो पूरी सेना को लेकर युद्ध के लिए राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए निकलते हैं। तो सेना उनका मंत्री सोचने लगते भी क्या किया जाए, युद्ध तो सामने तो कोई पक्ष है नहीं युद्ध करने वाला, शत्रु तो है नहीं, तो ये राजा कहाँ जा रहे युद्ध करने के लिए। फिर वो प्रसंग को देखते हैं, फिर वो मंत्री बुद्धिमान होता है, तो फिर राजा तो अपने मन निवेश में और लक्ष्मण और राम की सेवा के लिए उनकी सहायता के लिए और आगे बढ़ते हैं सैनिक को लेकर। लेकिन वो मंत्री एक युक्ति बनाता है और एक व्यक्ति को सामने से भेजता है और कहता है कि आप राजा कहाँ जा रहे हो महाराज, करके राम और लक्ष्मण की आफत में है, उनकी सहायता के लिए हम जा रहे हैं। तब वो व्यक्ति वो मंत्री कहने के कारण वो युक्ति बताता है और कहता है कि राम और लक्ष्मण तो जीत गए, उसको परास्त कर दिए, मार दिए, इसलिए आप लौट जाइए। तब वो बाह्य चेतन में आते हैं राजा कुलशेखर, फिर बाद में वापस अपने राजधानी में आते हैं। इसी तरह उनका मन हर हमेशा निवेश रहता है श्री राम चरित्र में, राम कथा में, रामलीला में। तो फिर बाद में मंत्री ने मना कर दिया कि कोई ब्राह्मण आए उनको कथा सुनाने के लिए, तब ऐसा प्रसंग कभी ना सुनाए ताकि उनको ऐसा करना पड़े, जो सुखमय हो रामचंद्र ऐसा ही कथा उनको सुनाना है। तो ऐसा ही सुनाते थे वो ब्राह्मण। फिर बाद में एक बार उस ब्राह्मण को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उनको पुत्र को भेजा महाराज को कथा सुनाने के लिए। जब उनका पुत्र आया, उस ब्राह्मण का पुत्र कथा सुनाने के लिए, तो उनको तो एक ज्ञान नहीं था, तो आकर फिर से वो कथा सुनाने लगे, तो उसने वही प्रसंग छेड़ा जो अभी चल रहा है, भगवान राम लंका पर आक्रमण करते हैं, युद्ध के लिए जाते हैं और सीता का हरण हो गया और दुखी है राम, और असुरों के साथ युद्ध करने जा रहे हैं और अकेले हैं राम और लक्ष्मण और उनकी थोड़ी सेना है वानर वो सब। तब फिर से उनका मन आवेश हो गया राम की सहायता करने के लिए फुलशेखर का, और फिर से उसने आदेश दे दिया, चलो हमें सहायता के लिए जाना है, हमें युद्ध के लिए जाना है। तो लंका को पार करने के लिए समुद्र के तट पर पहुंच गए राजा फुलशेखर और सैनिकों के साथ, और राजा सबसे आगे फुलशेखर, और आगे आगे जाते जाते पानी में समुद्र के जाने लगे, समुद्र के अंदर यहाँ तक चल दिए राजा रामचंद्र की सहायता के लिए। फिर बाद में उधर ही भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं, उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं कि आपको ऐसा सहायता करने की जरूरत है, सब ठीक हो गया, रावण का वध कर दिया है और आप निश्चित रहिए, और उनको बाहर लाते हैं समुद्र से और उनको दर्शन देकर आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह हरिमेश फुलशेखर अडवाल भगवान श्री रामचंद्र में कथा में निवेश रहते हैं, और उनका रचाया हुआ ग्रंथ मुकुंदमाला सूत्र पूर्ण रूप से अपने मन को स्मरण करते हुए पूरा ग्रंथ में उसने वर्णन किया है किस तरह भगवान के चरणों में मन को लगाना चाहिए। मुकुंदमाला सूत्र जो ग्रंथ है बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें पद बहुत सुंदर सुंदर है। इसी तरह दोनों संप्रदाय में ज़्यादा करके सीताराम की पूजा होती है, मध्वाचार्य संप्रदाय में और श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय में। प्रभुपाद ये दोनों बात कोट करते हैं अपने तात्पर्य में भावार्थ में। तो इसी तरह भगवान श्री रामचंद्र की कथा नित्य रूप से भक्तों के हृदय में निवास करती है, और भक्त उस लीला का स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए और स्मरण करते हुए इस कथा में अपने जीवन में आचरण कैसे करना है उस भाव से इसको श्रवण करते हैं और मनन करते हैं। तो इस तरह श्री रामचंद्र की इस कथा को सुनते हैं सब और अपने जीवन में मर्यादा के रूप में कैसे आचरण करें वो भी भगवान राम ने दिखाए। और इस श्लोक में जो भगवान को पूर्ण रूप से प्रस्थापित किया है समुद्र देव ने, क्योंकि अब समुद्र देव वैसे देवता है लेकिन अपने आप को जड़ कहते हैं, जिनकी बुद्धि जड़ है वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। उसी तरह कभी कभी समय के अनुसार बड़े बड़े देवता की बुद्धि भी इसी तरह जड़ हो जाती है। ऐसे सविश तत्वों में मन बुद्धि अहंकार जड़ भी माना गया है, सूक्ष्म है लेकिन जड़ है, जड़ तत्व है। तो कभी समय के अनुसार हम देखते हैं कि जड़ इंद्र प्रभुपाद आके के श्लोक में कोट किया, इंद्र का भी ऐसा हाल हुआ था कि वो नहीं समझ पाए भगवान को, और उनकी बुद्धि जड़ होने के कारण ऐसा कभी होता है। तो इसी तरह समुद्र देव भी अपने आप को कोसने लगे, फिर बाद में कहते हैं कि आप ही ईश्वर हैं, आप सभी जीवों के ईश हैं, और सभी गुणों से परे है, क्योंकि जो तीन गुणों में रहते हैं उनकी बुद्धि कभी कभी जड़ बनकर जो नहीं समझ पाते भगवान को। लेकिन भगवान आप तो तीन गुणों से परे हैं, इसलिए हमको आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हमारी बुद्धि जड़ होने के कारण हम आपको नहीं समझ पाए। इस तमोगुणी जीव, रजोगुणी जीव और सत्वगुण की जो देवता है वो सत्वगुण में स्थित रहते हैं, जो रजोगुणी है वो अपने कार्य में जो अन्य अन्य लोग हैं आसक्ति के कारण, रजोगुण के कारण वो उसमें व्यस्त रहते, और भूत जो भूतों के नाथ है, भूतों के पति हैं, वैसे देखा जाए तो उसको ये अंगित कर रहे शिव जी के द्वारा, शिव जी को जो भूत पतय, जो तमोगुण के अधिष्ठाता देव है शिव जी, सारे विश्व को जो प्रलय करते हैं, नाश करते हैं, लेकिन वो भी भगवान के अधीन, भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। जो भूतों के पति, के भूतों के स्वामी जो शिव जी को कह रहे हैं, तो इसी तरह सभी जीव और सभी देवी देवता भगवान के अधीन रहकर उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। वहां तक के समुद्र, सूर्य, महाभारत में प्रसंग आया जयद्रथ के, भगवान के इशारे पर सूर्य भी अस्त और उदय होते हैं। तो इसी तरह भगवान के इशारे पर मैं अध्यक्षण प्रकृति, भगवद गीता में भगवान कहते हैं मेरे अध्यक्ष, मेरे इशारे पर प्रकृति चलती है। वैसे जब ब्रह्मा जी ने और विष्णु ने यह पृथ्वी का रचना किया तब यह जड़ थी, भगवान ने दृष्टि किया महाविष्णु ने, तब ये चलायमान हुआ है पूरा विश्व। तो इसी तरह भगवान की दृष्टि गिरने से समुद्र देव समझ पाए कि मुझे भगवान की सेवा करना चाहिए, और सेवा और सारी पूजा की सामग्री लेकर भगवान के सामने आए और इस एक ही श्लोक में स्तुति करते हैं श्री समुद्र देव, और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह समुद्र देव की स्तुति महत्वपूर्ण है, इस पर व्याख्या तो तत्व से तो मैं नहीं कर पाया, कमलोचन प्रभु या अन्य जो जानते हैं वो कर सकते हैं। तो लीला को स्मरण करते हुए इस अध्याय का सार यही है कि भगवान रामचंद्र की कथा स्पीड से सुखदेव गोस्वामी सुखदेव परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, और फिर बाद में आगे अन्य इस सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है, होता है भागवतम श्रवण करने का, तो इसी का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए हम अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद महाराज की। कोई प्रश्न है तो कमल प्रभु से पूछ सकते हैं। समझ पाते हैं पशु का जड़ बुद्धि होने के कारण जो उनको उनके मालिक द्वारा दिशा बताई जाती है उसी एक ही दिशा में चलता है, क्योंकि उनके और बुद्धि नहीं रहती है। लेकिन मनुष्य की और कई तरह की बुद्धि और भावना चलती है, तो तुरंत सोचने लगता है मेरे लिए हित है या हानिकारक है। जो सुनते हैं हम, यहाँ तक के शास्त्र के बाद भी हम सुनते हैं ना, तब अपना मन चलता है फिर से उसमें कि ये मेरे लिए हित है। जो उपदेश दिया जाता है कि समझो, प्रभुपाद भी कहते हैं कि मंगला आरती में आना चाहिए सभी को, तब तुरंत मन विचार करता है कि मंगला आरती में जाने से एक तो हम जो काम पर जाते हैं उसमें नहीं जा पाएंगे, दूसरा सोचता है कि उधर जाकर क्या मंगला आरती में जाकर कुछ होगा लाभ जो बताते हो, वही मन सोचने लगता है। लेकिन पशु बुद्धि में वो नहीं होता, पशु बुद्धि में जो उनका मालिक जो दिशा बताता है उसी में वो लग जाता है, अगर नहीं उस दिशा में गया तो उनको मार पड़ता है। लेकिन यहाँ जो हमको शास्त्र और गुरु आदेश देते हैं लेकिन मारते नहीं है, जब मार पड़ेगा तब तो शायद समझेगा, लेकिन मारते नहीं है। लेकिन वो अपने मन को इसी तरह कई विभाग में बांट लेते हैं और कई मन में इच्छा कर लेता है इसलिए वो पूरी तरह से और आज्ञा अनुसार जो भक्त आज्ञा अनुसार होता है, जो शास्त्र में विश्वास है, गुरु वैष्णव में विश्वास है, वो निश्चित रूप से बात स्वीकार कर लेता है। लेकिन जिनको शास्त्र में विश्वास नहीं है, वैष्णव में विश्वास नहीं है, गुरु में विश्वास नहीं है, वो बात नहीं स्वीकारता है, वो अपनी जड़ बुद्धि के कारण उसी में लगा रहता है। लेकिन जिनको विश्वास है, सत्वगुणी बुद्धि है, वो निश्चित रूप से स्वीकार करके अपने जीवन को उसी तरह व्यतीत करते हैं। ठीक है, श्रील प्रभुपाद महाराज की।